रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वीदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मदं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। भगवान के चरणों की वंदना होती है, भक्तों के चरणों की वंदना होती है, सद्गुरु के चरणों की वंदना होती है, भक्ति के चरणों की क्या वंदना होती है। नामाजी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए। चार हैं एक ही, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो को हमारा चरणों में प्रणाम तीन के तो समझ में आता है, भक्ति का चरण कहां होता है। तो इसका समाधान है कि कहने के लिए भक्ति भगवान से अलग है, संतों से अलग है, गुरु से अलग है। चतुर नाम और वपु एक, कलेवर तो एक ही है ना। तो भगवान के कलेवर में भक्ति आ गई, तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो उस भक्ति आ गई। जैसे गृहस्थ के अंदर जो मुखिया आदमी होता है वो कहीं पहुंच जाता है तो कहते हैं वो परिवार आ गए, क्या कि साहब सबसे मुखिया आदमी ना वो आ गए। देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो वहां जो समझौता होता है वहां ये नहीं कहते कि अमुक प्रधानमंत्री का समझौता हुआ, देश का समझौता हुआ, भारत का समझौता हुआ, अमुक देश का समझौता हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति चले गए प्रधानमंत्री चले गए। इसी प्रकार से भगवान के चरणों की वंदना हो गई तो इसमें सबकी चरण वंदना हो गई। भगवान भी अब कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, तो फिर भक्तों का नाम ले दिया। क्या भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, प्राय करके भक्त नाम से सगुण आराधना करने वाले माने जाते हैं। निर्गुणों को तो ज्ञानी बोलते हैं, जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर उसी में ही रमण करने वाले हैं, उनको भक्त नहीं कहते, उनको तो ज्ञानी बोलते हैं। ये तो गीता में कुछ भगवान के शब्दों की विशेषता है कि जिन्होंने भक्त को ज्ञानी कहा है। आर्थो जिज्ञासार्थी ज्ञानी च भरतर्ष, वहां पर भक्त को ज्ञानी का ये भगवान के कहने में ताकत है, कह सकते हैं समर्थ है। पर लोक में तो यही आता है ना, तो फिर वहां कह दिया गुरु नाम दे दिया सद्गुरु। जो सन्मार्ग की तरफ लगाए, भगवान की तरफ लगाए, चाहे वो निर्गुण की तरफ चले चाहे सगुण की तरफ चले। निर्गुण भक्ति होती है, सगुण भक्ति तो होती है, निर्गुण भक्ति भी होती है। क्या कि निर्गुण निराकार में आकर्षित होना, स्वरूप में आकृष्ट होना, अपना जो स्वरूप है उसमें आकृष्ट होना, ये आकृष्ट होना ये भक्ति है। सगुण सगुण साकार में भगवान की छवि में आकर्षित होते हैं, लीला में आकर्षित होते हैं, नाम में आकर्षित होते हैं, धाम में आकर्षित होते हैं, और यहां निर्गुण निराकार में तत्व में आकर्षित होते हैं। इस कारण से भक्ति दोनों में ही आती है, निर्गुण में भी आती है, सगुण में भी आती है। पर प्रायः लोग मानते ऐसा ही है कि भक्ति सगुण वाले करते हैं, निर्गुण वाले ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां नाभाजी की भक्तमाल में प्राय सगुण भक्त मिलेंगे। भक्तमाल है ना, भक्तों की माला है। यूं माला के अंदर सूत की माला हो, सूत्रे मणि गणा इव, ऐसे भगवान और भक्त, भगवान और भक्त, और बीच के अंदर वो भक्ति चल रही है। जैसे भक्त भक्ति करता है ऐसे भगवान भी भक्त भक्तिमान माने गए, वो भक्त की भक्ति करते हैं। उनमें आज चंद्रहास भक्त की कथा सुनाते हैं। ये जो नाभाजी ने कई भक्तों की वंदना की कि इनके चरणों की धूली को मैं सिर पर रखता हूं, उनमें चंद्रहास इस भक्त हुआ। हु तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियो विपति धाई लाई और पुर है। दूर देश में, केरल देश की बात है, वह सुधार्मिक नाम का एक राजा था। राजा का नाम था सुधार्मिक, यथा नाम तथा गुण, बड़ा धार्मिक था। और उसके बेटा था चंद्रहास। सुधार्मिक जवानी में ही चला गया, ये पहला बेटा हुआ, और वो युद्ध के अंदर मारा गया। सुधार्मिक नाम का राजा मर गया। अब ये बच्चा छोटा सा, मां सती हो गई, मां ने अपने बच्चे को अपनी दासी को दे दिया कि देख भाई इसके पिता चले गए, मुझे सती होना है, एक धरोवर है, इसका तुम पालन करना। शासन आ गया शत्रुओं के हाथ में। दासी ने देखा कि इसको कौन जीने देगा, तो धाई मां थी उसने वो बच्चे को लेकर के वो कुंतलपुर चली गई। कुंतलपुर बहुत बड़ी स्टेट थी, उसी के नीचे ये था चंद्रहास के पिता का राज्य। वो चुपचाप वहां से कुंतलपुर के लिए रवाना हो गई। कुंतलपुर का एक मंत्री था, उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि का अर्थ होता है खराब बुद्धि, बहुत खराब बुद्धि वाला। तो वो दासी उस बच्चे को लेकर के, अब कहां दासी भी बिचारी कहां पालन करे, तो वो मंत्री के वहां रही और वहीं उनका काम कर लेती, बच्चे को रोटी मिल जाती और बच्चे को पालन किया। तो 3 वर्ष का हुआ बच्चा, तो बच्चा 3 वर्ष का हुआ तो वो जो दासी थी, धाई मां थी, वो भी खत्म हो गई। अब वो अनाथ हो गया, लेकिन चंद्रहास के अंदर बचपन से ही भगवान की भक्ति के कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। और तो कुछ बेचारा जानता नहीं था। धाई मां ने भी राम राम करना सिखाया, भगवान का नाम लेना सिखाया, और वो भगवान का नाम लेता है। एक बात है, जो जितना असहाय होता है, जितना वो संसार से उपेक्षित होता है, संसार से तिरस्कृत होता है, संसार से अनादृत होता है, उतना ही उसके मन में भगवान के प्रति भाव स्वतः ही बनता है। तो चंद्रहास का खेल खेल में भी प्रहलाद की तरह से भगवान के नाम के उच्चारण करने मात्र से उसको आनंद का अनुभव होता था। ऐसे भी थे। अब एक बार क्या हुआ कि नारद जी आए घूमते गामते, सर्वज्ञ है नारद जी, तो संत की पहचान संत कर लेता है, दूसरे तो क्या जाने। नारद जी उन बच्चों में खेलने वाले चंद्रहास को देखा, देख के बुलाया अपनी तरफ, कहा कि बेटा एक काम करोगे कि क्या, आंख बंद करो। आंख बंद कर दी, एक गोल मटोल सालग्राम का ध्यान कराता हूं, छोटे से ठाकुर जी, वही मुख है, वही आंख है, वही नाक है, गोल मटोल है, अच्छी बात। ध्यान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो तुम ये ध्यान कर लोगे? कर क्यों नहीं लेंगे, कर ले। नारद जी ने देखा कि अब इसको एक सालग्राम की मूर्ति दे दे, सालग्राम की मूर्ति दे दी और कहा कि मैं एक मंत्र सिखाता हूं, उस मंत्र को बोलने के बाद इसको मुंह में रख लेना है और मुंह से निकालने के बाद एक बार मंत्र बोलना और फिर इसको निला करके और फिर इसको अपने सामने रखना एकांत में। क्या महाराज, मुंह में रखने का क्या मतलब? कि बस मैं कहता हूं वैसा मान ली। अब आप लोग भी सोचोगे कि भाई भगवान की मूर्ति को मुंह में रखना, वो तो झूठे हो जाएंगे। इसीलिए नारद जी ने कहा कि मैं एक मंत्र देता हूं, पहले वो मंत्र बोलना, सालग्राम जी को सुना देना और फिर उसके बाद मुंह के अंदर रख लेना, फिर निकालो तो वो मंत्र बोल देना। इससे क्या होगा कि ठाकुर जी के अंदर तुम्हारे मुंह की अपवित्रता नहीं जाएगी, झूठापन नहीं जाएगा। फिर कहा कि महाराज मुंह में रखने का क्या मतलब? मैं और कहीं रखूं? तो कहे और कहीं तुम कहां रखो कि बच्चे हो, ये बात किसी को बताने की होती नहीं, जहां भी जाओगे मुंह तुम्हारे पास है तो अपने मुंह में रखो, घबराओ मत कि ठाकुर जी कोई झूठे हो जाएंगे, विश्वास दिला दिए। वो मुंह में ही रखते थे हरदम और जब पूजा का करने का भाव होता, निकाल करके मंत्र बोल करके धो पूछ करके और पूजा वगैरह करके वापस मुंह में डाल लेते। ऐसे वो चलने लगा कार्यक्रम उसका। एक दिन उस मंत्री के यहां संतों का ब्राह्मणों का भोजन था, तो उस ब्राह्मणों के भोजन के अंदर अच्छे अच्छे दूर दूर से बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, तो वो जो मंत्री धृष्ट बुद्धि, उसका तो मन नहीं था भोजन वोजन कराने का, उसके लड़के का थोड़ा भाव था, लड़के ने बुला लिया, अच्छी बात। अब उसने क्या किया कि जितने ब्राह्मण लोग आए थे उन ब्राह्मणों से मंत्री ने देखा कि इनकी परीक्षा ले कि आपके चोटी है कि नहीं, आपके जनेऊ है कि नहीं, आप त्रिकाल संध्या करते हो कि नहीं, ये ब्राह्मण का अपमान है। ब्राह्मण से पूछे कि तुमको गायत्री मंत्र आता है कि नहीं, अपमान है। ब्राह्मण के अंदर तो पहले ही माता पिता उसके अंदर संस्कार ही ऐसा डालते हैं, उस जमाने की बात है, ब्राह्मण को ब्राह्मण होने का इसलिए गर्व होता था कि मैं अपने नित्यनेम का अनुष्ठान करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र नहीं जानता, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, वो अपने आप से ग्लानि करता था, अरे ब्राह्मण घर में जन्म लेकर मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, मैंने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, तो अपने आप ही ग्लानि से भरा हुआ होता है, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण की परीक्षा तो एक जगह ही होती है, श्राद्ध में जब भोजन कराते हैं केवल वहां ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए कि ब्राह्मण कैसा है, खान पान कैसा है, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले ब्राह्मण को यदि श्राद्ध में भोजन कराया जाए तो पाप लगता है, यजमान को पाप लगता है। नशा करने वाले जो साधु हैं उनको संत समझ करके और उनको कुछ उनका किया जाए तो पाप लगता है। कई बातें आती है, अस्तु उस प्रसंग में नहीं जाना। तो उसने परीक्षा ली कि महाराज ये मेरी लड़की 5-7 वर्ष की तो हो गई, अब इसका विवाह का समय आएगा तो कैसे लड़के के साथ विवाह होगा। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा अभी तो विवाह की योग्य हुई नहीं, उससे पहले तो हमसे पूछता है और हमारी मखौल करता है। मन में समझे, इतने में चंद्रहास उधर से खेलते खालते आ गए तो कहा कि तेरी लड़की का विवाह होगा और इस छोकरे के साथ होगा, इसके साथ दासी का बेटा है, मेरे यहां टुकड़े खाता है, मैं इसको पालता हूं, दासी पुत्र के साथ तो मेरी लड़की का विवाह हो ही नहीं सकता है। आपका गणित, आपका ज्योतिष, जो कुछ है सब आपका व्यर्थ है, कोई काम नहीं। उल्टे ब्राह्मणों को वो अपमानित करने लगा। ब्राह्मणों ने कहा भाई देखो, हमने तो हमारी विद्या के अनुसार कहा है, ठोस कहा है, ठोस सच्ची बात कही है, तेरे नहीं जैसे तो सत्य थोड़ी बदल जाएगा। कोई सूरदास कहे कि सूर्य उदय नहीं हुआ, काय का सूर्योदय, अरे भाई भयंकर गर्मी, सूर्योदय हो गया, 9:30 बज रहे हैं, सूर्योदय क्यों नहीं हो, मैं नहीं मानता। तो उसके नहीं मानने से कोई अभी सूर्योदय नहीं हुआ क्या। ब्राह्मणों ने कहा तू चाहे मान चाहे मत मान, तेरी लड़की का विवाह इसी के साथ होगा। तो ब्राह्मण चले गए, और वो वहां पर रहने लगे, बच्चा तो वहीं था। उसके बाद चंद्रहास का काम थोड़ा, वो अपने भगवान की भक्ति भाव में रहने लगा, और इधर इसके धृष्ट बुद्धि के मन में ये बात आने लगी कि मैं दासी पुत्र के साथ कैसे विवाह करूं, मेरा तो कोई सम्राट की कोई कन्या हो, मैं सम्राट का कोई पुत्र हो उसके साथ विवाह हो, इसके साथ तो करूंगा नहीं। और ब्राह्मणों ने बहुत जोर से ये बात कह दी तो क्या करो कि इस बच्चे को अभी मार दो। तो उस बच्चे को लेकर के और हथियारों को बोल दिया, धीवर धीवर जो मछली पालते हुए, अब वो राज्य का मंत्री, उसके हाथ में तो बड़ी सत्ता, धीवरों को बुला के कहा कि देखो ये बच्चा है ना, इस बच्चे को तुम बुला फुसला करके जंगल में ले जाकर इसको मार मारो। क्या अच्छी बात, मार देंगे हम तुमको भरपूर इनाम देंगे, ठीक है। और राजा के पास खबर चली गई, राजा के पास जाएगी तो मेरे पास ही तो आएगी, मैं ही तो मंत्री हूं यहां का, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। योजना बना दी और ले गए उसको बच्चे को खेलने घूमने ऐसी बाने करते करते घनघोर जंगल में ले गए। अब चंद्रहास तो अपना केवल भजन ही भजन करे, खेलता खेलता भी भजन करता ही था, तो भजन करने वाले की सकल सूरत होती है, वो भजन नहीं करने वालों से अलग ही होती है। संतों ने कहा है कि उसकी चाल ढाल नयन नयन बैण वारा कह देता है, नयन और वैण माने वाणी, वो ऐसी विलक्षण होती है, अपने आप पता चल जाता है कि ये भजन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो उन धीवर लोगों ने देखा कि लड़का लगता तो बड़ा सीधा साधा है, भगवान का स्मरण करता है, हम धन के लालच में इसको मारेंगे अच्छा तो नहीं लगता है, ये काम अच्छा नहीं है। दो तीन लोग थे उन सब ने कहे बात तो बढ़िया नहीं है, ये हमारी जाति बड़ी खराब है, मछली को पकड़ना मछली को मारना इस धंधे में लगे रहने से आज देखो हम मनुष्य को मारने के लिए भी ले आए हैं, धन का ही तो लालच है, बड़ी अपने में ग्लानी हुई। पर्दे का भी मंत्री की भी आज्ञा है। तो उस समय चंद्रहास से कहा कि बालक तुझे सच्ची बताया, मंत्री जी ने तुमको मारने के लिए हमें भेजा है, अब तू जिसको अपना सहायक समझता है, जिसको तू अपना समझता है उसको याद कर ले, जो तेरा रक्षक है सहायक है जो भी तेरा है उसको तू बुला ले, याद कर ले, कुछ कर ले, ये तो तेरा तो अब समय पूरा होने वाला है। अब हाथ में सब शस्त्र वगैरह पूरे थे, चंद्रहास बिल्कुल नहीं डरा, उसने कहा कि देखो मार भले ही देना पर मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं कि तुम जाओगे तो ना कहीं, नहीं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा कहां, आप मेरे चारों तरफ घिरे हुए हैं, कहां जाऊंगा, मुझे उस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ ले और मैं कहूं कि अब मेरे पर हथियार चलाओ तो फिर हथियार चला जाएंगे, मैं याद तो कर लूं किसी को, कहा कि भाई मौत के समय सबको याद करने की छूट दी जाती है, अंतिम समय में कोई किसी से मिलना चाहे और करना चाहे उसको छूट तो सबकी तरफ से मिली भी रहती, तुम भी याद कर लो किसी को करना है, वो बैठ गए और अपने मुंह में शालग्राम जी थे, नारद जी को याद किया कि हे संत महापुरुष आपके कहने से मैंने अपने मुंह में शालग्राम जी को रखा, यदि शालग्राम जी को मुंह में रखने के अपराध से मुझे मारते हो तो मार सकते हैं, परंतु नारद जी मैंने तो आपके कहने से रखा है, आपने जिन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा उन मंत्रों का मैंने उच्चारण किया है, मेरी दृष्टि में मैंने कहीं भूल की नहीं है, और हे शालग्राम जी महाराज मेरी कोई पूजा में कमी रह गई हो तो आप क्षमा करना, पर मैं इतना पूछना चाहता हूं कि मुझे मारने की योजना क्यों बन रही है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मैंने मंत्री का कौन सा अहित किया, इस मंत्री के यहां मैं पड़ा हूं तो मेरी दासी ने लाकर मेरे मां ने लाकर के रखा है और तो मैं जानता नहीं किसी को, इस प्रकार से वो बेचारा भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इस प्रार्थना से प्रार्थना के बाद उस चंद्रहास ने उनको कहा धीवरों से कहा कि अब मेरे को मार दो, तो वो उसको देखने लगे तो उनके अंदर भगवान की झांकी दिखने लगी, चंद्रहास के शरीर में भगवान की दिव्य झांकी दिखने लगी, क्या सुंदर भगवान का मुख है, कैसा सुंदर भगवान का चिबुक है, कैसी मुस्कुराहट है। तो देखो भगवान ने उन सारे धीवरों को मोहित कर दिया। अपनी लंबी लंबी भुजा बताई, बालों के ये जो घुंघरालू बाल दिखाए, बड़े सुंदर मुस्कुराहट से उनको जो है वश में कर लिया भगवान ने। अब वो सोचने लगे कि अरे हम दृष्ट बुद्धि की बात क्यों माने, कितने सुंदर भगवान के दर्शन हो रहे, बिना तपस्या किए, बिना नाम लिए, बिना त्याग किए, देखो कैसे भगवान की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे करते करते वे भगवान के रूप में डूब गए। विचार किया कि एक भगवान का नाम लेने वाला, उसका थोड़ी देर मारने के लिए संग किया, उसमें इतना आनंद हुआ। यदि इसको न मारा जाए तो ये भगवान कितने खुश होंगे। हम तो पिछले जन्म के पापों के कारण से नीच जाति में पैदा हुए हैं। चंडाल योनि तो यही पीता है, ये पिशु पाप योनि है। पाप योनि वो होते हैं जो पिछले जन्म में पाप किए हुए हैं, वे नीचे कुल में, चंडाल कुल में, उनमें जाकर के स्वपक्ष में, इनमें जाकर पैदा होते हैं। ब्राह्मण आदि होते हैं वो सात्विक कर्म जिनके अंदर खूब होते हैं, वे ब्राह्मण बनते हैं। और रजोगुण प्रधान और सत्वगुण गौण होता है, वो क्षत्रिय होते हैं। रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान और रजोगुण गौण होता है, वो वैश्य होता है। और तमोगुण प्रधान, रजोगुण, सत्वगुण आदि गौण, वो शूद्र होता है। और केवल तमोगुण ही प्रधानता होती है तो वो पाप योनि में जन्म लेते हैं। तो कहा कि हमने पिछले जन्म में भयंकर पाप किए, तभी तो स्कूल में जन्म लिया, कम से कम स्कूल में तो सावधान हो जाए, मारेंगे एक साथ सबके मन में बिचारा है, मारेंगे किसी हालत में नहीं, पर मंत्री जो हमको नहीं छोड़ेगा, मंत्री हमको पूछेगा कि तुमने क्या किया, अपन कह देंगे उसको छोड़ दिया, हमने तो नहीं मारा, हमें तो उसके अंदर भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए हमारे मन में नहीं आई मारने की, तब मंत्री हमको मरवा देगा। क्योंकि मंत्री को डर लगेगा कि हमारे कहीं पोल न खोल दे, तो मंत्री हमको मारे नहीं, और मंत्री को विश्वास हो जाए कि हमने उसको मार दिया, इसका क्या करेगा, तब उसको खूब अच्छी तरह से देख दाग करके क्या करे। तो उसके पैर के अंदर एक अंगुली बड़ी हुई थी, वो छंगू था, छंगू अपने सबके हाथ में पांच, इसमें भी पांच, पैरों में भी पांच, इसमें पांच, 20 अंगुली है। उसके पैर के अंदर एक अंगुली बड़ी हुई थी, वो एक अंगुली बड़ी हुई थी, वही उसका दुर्भाग्य था कि बाप उसका मर गया, धाई मां ने दूसरी जगह रख दिया, फिर इसके मारने का हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी एक अंगुली काटा और उसको जंगल के अंदर डाल दिया, पत्ते वत्ते के नीचे डाल दिया। और मंत्री के पास में गए और मंत्री को दिखाया कि साहब देखो हमने मार दिया, इसका प्रमाण उसकी अंगुली हम आपके पास लेकर के, बहुत अच्छा है, खूब भरपूर उनको इनाम दिया, खूब बढ़िया इनाम मिल गया, वो खुश हो गए। इधर एक राजा था, चंदनावती नगर था, उसका एक राजा था, उसका नाम था कुलिंदक, अटपटाई नाम। उसने एक बहुत विशाल जो है यज्ञ करवाया पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। और अंतिम दिन पूर्णार्ती थी, पूर्णाहुति दे दी। ब्राह्मणों ने कहा कि तुझे पुत्र तो मिलेगा, पुत्र तो तेरे होगा, चाहे कभी हो बोले। ब्राह्मणों को अपने अनुष्ठान पर पूरा भरोसा था, तो पुत्र का यज्ञानुष्ठान करके और वो कुलिंदक गया जंगल में, और वहां पर ये चंद्रहास दिखाया उसको। चंद्रहास दिखाया, छोटा सा बालक और एक पक्षी अपने पंखों के नीचे उसको यूं रख रखा है। वो पक्षी ऐसा है कि वो पक्षी जिसको अपने पंख के नीचे रखता है उस व्यक्ति का भविष्य बहुत विलक्षण होता है। तो उस राजा ने अंग बच्चा ले लिया और वहां पर चारों तरफ हिरण थे, वो उसकी रक्षा कर रहे थे। हिरण जब चारों तरफ रहते हैं तो वो भी किसी पवित्र प्राणी के ही रहते हैं, और वो बालक था वो वहां पर भगवान का नाम ले रहा था। इतने में ही वो राजा पहुंच गया। राजा ने पूछ के कहा कि बेटा तेरा बाप का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है, तू यहां अकेला रोता क्यों है? तो क्या उसने उत्तर दिया है, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। मम माता पिता कृष्ण है, मेरी माँ भी कृष्ण है और पिता भी कृष्ण है। मम माता पिता कृष्ण तेना हम परिपालित है, माँ बाप मेरे कृष्ण है, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। फिर रोता क्यों है? तम पश्यन् महाराज रोदनं क्रियते मया, वो कृष्ण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। कृष्ण दिखाई दे तो ये मेरा रोना धोना बंद हो जाए। ताकि अरे छोटा सा छोरा 5-6-7 वर्ष का इतनी बढ़िया बात बोलता है। उस बच्चे को ले लिया, कहा कि देख भाई, मन में सोचा कि मैं पुत्रहीन हूं और आज ही अनुष्ठान किया हूं, इसको मैं ले चलूं। कहा देखो भाई, मेरे साथ चलने के लिए तुम तैयार हो? मेरे साथ चलने के लिए तुम तैयार हो कि जानबूझ करके तुम यहां बैठे हो? कि मैं जानबूझ करके यहां नहीं आया। तुम जंगल में कैसे आए? कि बस मेरे माता पिता कृष्ण है, उनका जैसा विधान होता है वैसे ही सब प्राणी चलते रहते हैं, उनका विधान ही था ऐसा जंगल में रहने का। तो मेरे साथ चल लोगे तो उनका विधान होगा तो क्यों नहीं चलूंगा। राजा ने उसको अपने घोड़े पर बैठाया, घोड़े पर बैठा करके और अपने राज्य में ले आया। चंद्रहास अब 7 वर्ष के हो गए, तो राजा ने सोचा कि अब इसको स्कूल में भेज देवे, पाठशाला भेज देवे। कहा कि बेटा तुमको पढ़ाई करनी है जो आपकी इच्छा, पढ़ाई में भेज दिया। पर पढ़ाई में मन नहीं लगे, वो बैठे बैठे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहे। गुरु जी कहे बेटा हम पढ़ाते हैं वो तुमको याद होता है क्या? कि सच्ची बात है गुरु जी, मेरे अंदर तो केवल एक ही जाप चलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। गुरु जी ने कहा भैया मेरी पढ़ाई का जो सार अभी तक हमको नहीं मिला वो तुमको मिल गया। संसार में केवल भगवान की शरणागति ही सब विद्याओं का सार है। सा विद्या या विमुक्तये, जिससे जीव की मुक्ति हो जाए उसी ज्ञान को विद्या बोलते हैं। पुस्तक की विद्या को विद्या नहीं बोलते। तुमने तो पढ़ाई कर ली। राजा के पास भेज दिया कि महाराज आपका लड़का सब सर्वशास्त्र विशारद है, सारे शास्त्र कर लिए है। इतने जल्दी सारे शास्त्र पढ़ लिए? यूं नहीं महाराज, वो शास्त्र ऐसे पढ़े हैं कि शास्त्र का सार ज्ञान कर लिया। सार अच्छी बात है। फिर राजा लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो जवान हो गया, तो राजा ने देखा कि भाई ठीक है, अब हमारा लड़का जवान हो गया, इसको तो दे दो राज्य और अपने जाकर के भगवान का भजन करो। क्योंकि उम्र के जो अलग अलग खंड बताए हैं शास्त्रों में, भाई इतने दिन तक बचपन में अध्ययन करो, इतने दिन तक गृहस्थ में रहकर सेवा करो, और इतने दिन तक रहकर अपने गृहस्थ में बैराग्य करो, और फिर आगे पूर्ण बैराग्य ले लो। तो अपने अब सब काम हो गया, सबसे तृप्त हो गए, राज्य भी करके देख लिया, दान दे करके देख लिया, सब व्रत उपवास करके देख लिया, अब केवल भगवान का भजन करना है। उसकी उम्र आ रही है, शरीर भी बदल गया, समय बदल गया, समय के साथ जो अपने भाव को नहीं बदलता है वो मूर्ख कहलाता है। अपने को अब जाकर भगवान का भजन करना चाहिए, सारा राजपाट दे दिया चंद्रहास, और राजा चले गए वन में। अब चंद्रहास का राजा बन गया, एक छोटी सी रियासत थी उसका राजा बन गया। इधर क्या हुआ कि चंद्रहास के अंदर चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, शरीर में और में रेखाओं से, उसके आकृति से, उसके व्यवहार से, जो जो चक्रवर्ती सम्राटों के लक्षण होते हैं वो सब उसमें थे। तो एक बड़ी स्टेट थी जिसका मंत्री दृष्टबुद्धि था, उस स्टेट के नीचे ये राज्य था। तो वहां के लोगों ने, पंडितों ने, मंत्रियों ने कहा कि देखो अब आप किसी के नीचे नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर सम्राट के लक्षण है, इसलिए आप किसी को भी कर मत, कर जमा मत कराओ, टैक्स लगा कुछ मत बोलो, मना कर दिया। वहां के मंत्रियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तब जिस राज्य के अधीन ये नगर था वो ही कुंदल राजा आया, उसने अपने मंत्री को भेजा दृष्टबुद्धि को, और कहा कि जी उस नगर का टैक्स हमारे पास नहीं आता है, बात क्या है, जाओ तुम बात करके आओ। तो वही दृष्टबुद्धि गया, लोगों से पूछा कि राजा, राजा ये राजा का नाम क्या है, राजा का नाम चंद्रहास है, चंद्रहास, ठीक है। अब चंद्रहास कोई भी हो सकता है। तो वो जाकर के मिला मंत्री, देखा ये तो वही है, इसको तो मारने के लिए हमने धीवरों को भेजा और उसको मार भी दिया था, उसकी अंगुली भी हमारे पास लाके प्रमाण में दी थी, और ये पूछे तो कैसे पूछे। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया और चंद्रहास ने मंत्री को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो उस मंत्री ने विचार किया कि एक दाव तो मेरा चला गया, अब इसके वो दूसरे दाव से मार देना चाहिए। तब उसने बड़े प्रेम से चंद्रहास से बात करते हुए कहा कि महाराज आप तो एक बहुत अच्छे से, उसने पता नहीं चलने दिया कि मैं आपको जानता हूं, अच्छे स्टेट के राजा होंगे, आपकी तरफ से लगान जमा नहीं हुआ, इसलिए मेरे देश के राजा ने आपको भेजा है, और जब तक मेरे देश के राजा आपको चक्रवर्ती सम्राट नहीं माने तब तक आप अपनी तरफ से चक्रवर्ती सम्राट होकर टैक्स नहीं दो तो ये संघर्ष का काम हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा दोनों स्टेटों में, इसलिए आप ऐसा करो कि तीन कमी है आप में, एक तो आप यहां के जो पहले राजा थे जिन्होंने यज्ञानुष्ठान करके पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा प्रयास किया, सारी दुनिया जानती है उनको कोई पुत्र मिला नहीं, उनके औरस पुत्र तो आप हो नहीं, और दूसरे आप हमारे राजा के अधीन हो, उन्होंने मान्यता दी नहीं है, और तीसरे में हमारे राजा की अनुकूलता प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप अलग स्टेट बनाकर चक्रवर्ती कहलाओगे। इसलिए आप पहले ही पहले यहां से मेरे घर जाओ, और मेरे घर में मेरे साथ मेरा बेटा राजा के पास जाएगा, और मैं ये कागज लिख देता हूं कि बहुत अच्छा सम्राट है, बहुत अच्छा शासन है, चक्रवर्ती सम्राट है, आप इसको मान्यता दे देना। ये कागज में लिख देता हूं, ये कागज ले जाकर सीधे मेरे बेटे को दे देना, और मेरे बेटे को देने के बाद फिर जो है मेरा बेटा राजा के पास जाएगा, और मेरे हाथ का लिखा हुआ कागज देख करके वो बेटे जो है तत्काल आपको अपने अनुकूल मानकर आपको अलग से स्टेट का मालिक बना देगा, और कोई भी लड़ाई भी नहीं होगी। ठीक है, वो बेचारा रवाना हो गया, रवाना हो गया तो शालग्राम की पूजा उजा करके रवाना हो गया। रवाना होकर के घोड़े पर बैठ के आया था तो वो उस नगरी में पहुंच गया। उस नगरी में पहुंचने के बाद पहले बाहर बगीचे में विश्राम किया। विश्राम किया तो उसने जो अपना साफा बांध रखा था, गर्मी के दिन थे, वो उतार दिए। सागलग्राम की पूजा करने के बाद थोड़ी देर नींद आई तो विश्राम करने लगे, सो गया। उसी बगीचे में उसी मंत्री की एक लड़की आई सहेलियों के साथ खेलते खेलते। उसने देखा कि बड़ा सुंदर राजकुमार है, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरे विवाह के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, पर ये शायद अभी हमारे पिताजी की निगाह में नहीं आए। उस मंत्री की बेटी सोच रही इसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए, ये है कौन, आया कहां से, जाएगा कहां। खैर, इसके पास इसके साफे के अंदर ये कागज है, इस कागज को देखती हूं क्या है। कागज को देखा, अरे ये तो मेरे पिताजी के दस्तखत है, ये तो मेरे भाई के नाम लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा था, विषमस्मै प्रदातव्यम् त्वया मदन शत्रवे। बेटे का नाम था मदन, कि ए मदन, इसको तू जहर दे देना। विषम अस्मै प्रदातव्यम् त्वया मदन शत्रवे कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम्। इसका कार्य अकार्य कुछ मत देखना, और ये पाप है कि पुण्य है ऐसा भी तुम विचार मत करना। कर्तव्यम खलु मे प्रियम, बस मैं ये चाहता हूं इसलिए काम हो जाना चाहिए, ये हो ही जाना चाहिए काम, क्योंकि मैं चाहता हूं। तू कहेगा कि ये पाप है, किसी को जहर नहीं देना, ये बिल्कुल मत सोचो। वो कागज देखा, अरे ये मेरे पिताजी की बुद्धि इतनी खराब, इसको तो मैं चाहती हूं मेरा पति, और ये जो है मारने की बात लिख रहे हैं। फिर सोचे क्या करूं, तो प्राय माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे भी छोटी अवस्था में काजल तो लगाते ही थे आंखों की सुरक्षा के लिए, आजकल तो आंखों की शोभा के लिए लगाते हैं, पर पहले आंखों की सुरक्षा के लिए लगाते थे। तो वो अपना आंख थी, आंख का काजल था, काली स्याही से लिखा हुआ था, तो आंख के पानी से और आंख के काजल से दोनों से उसने विषम की जगह विषया लिख दिया। विषया उसका नाम था, बच्ची का नाम था विषया। तो विषम विषम अस्मै प्रदातव्यम, अब लिख दिया विषयास्मै प्रदातव्या, आसन कि इसको विषया दे देना, हे मेरे मदन ये तू दे देना इसको। कार्य कार्यम न द्रष्टव्यम, अब ये मत देखना कि क्या करूं, किससे करूं, जाति बिरादरी कुछ मिले नहीं, पिताजी भी यहां नहीं, ऐसे ये सब बातें रहना देना, कुछ मत करना, मेरा बहुत प्रिय कार्य इसी से हो जाएगा, अब बाकी सब लाइन है जैसी रखी। उसने वो कागज बदल करके यूं रख दिया, खुद अपने चली गई सहेलियों के पास खेलने लग गए। इधर वो जगह उसने अपना साफा वगैरह सब रख करके और वो सीधा चला आया मंत्री के घर पर ही। साहब मदन जी नाम आपका है, दृष्ट बुद्धि का मकान यही है ना, तो मैं अमुक अमुक नगर से आया हूं, वहां आपके पिताजी हाँ हाँ वहां गए हुए थे, उन्होंने एक कागज दिया, कागज दिया तो पढ़ा, विषयास्मि प्रदातव्या त्वया मदन शश्रवे कार्य कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु मे प्रियम। अच्छा वाह वाह, हमारे पिताजी ने फिर आपको खोज दिया, बहुत दिनों से परेशान थे हमारे पिताजी, बहुत अच्छा हुआ, आओ विश्राम करो। बस उसने अपने सालग्राम जी को निकाला, मंत्र बोले, पूजा वगैरह की, और उधर वो शादी की तैयारियां होने लगी, खूब जोर शोर से शादी हो रही है। उधर वो मंत्री भी आया, मंत्री ने आकर के देखा ये क्या हो रहा है, तब तक फेरे हो चुके थे, सांप के बीच फेरे भी हो चुके थे, सब हो चुका था, अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या किया, मेरे पत्र को तुम देखते तो सही, क्या लिखा था मैंने, साहब ये रहा आपका पत्र, आपने लिखा है कि विषया नाम की अपनी बेटी को इसको दे देना, विषयास्मि प्रदातव्या त्वया मदन शश्रवे कार्य कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु मे प्रियम, आपने लिखा ना, ये आपका लिखा हुआ हैंडराइटिंग आपकी। मंत्री ने देखा कि ये क्या हुआ, तो आश्चर्य है, कोई न कोई इसके साथ देवी शक्ति है। इधर बहुत ठाट बाट के साथ विवाह हो गया, विवाह हुआ तो उस विवाह के अंदर राजा कुश नगर का राजा भी आया था, अपने मंत्री के लड़की का विवाह है तो राजा क्यों नहीं आया, राजा आया, राजा ने चंद्रहास को देखा कि अरे मेरी लड़की का भी इसके साथ विवाह कर दूं, मेरे कोई लड़का भी नहीं है, तो उसने मंत्री के पुत्र से कहा कि भाई तेरे यहां तो विवाह हो गया ना तेरी बहन का इसके साथ, बस अब मेरी लड़की के साथ इसका और विवाह करना है। तो अच्छी बात है महाराज, चंद्रहास को कहा, चंद्रहास अब देखो हमारे कोई संतान है नहीं, हम ये अपनी लड़की है और तो कोई लड़का है नहीं, संतान में लड़की तो है लड़का है नहीं, इस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह कर दे, राज्य तुम संभालो, तुम्हारा काम जाने तुम जानो, हम तुमको ये राज्य दे देंगे। अब ये भ्रष्ट बुद्धि वाला सदागरी, ये तो बड़ी उल्टी बात पड़ गई। तब उसने सोचा कि अब क्या करें, कुछ ऐसा मार्ग निकाले कि ये बीच में खत्म हो जाए। तो उसने अपने चंद्रहास से कहा, जवाई साहब हमारे यहां एक नियम होता है, शादी होने के बाद दूसरे दिन केवल पति यहां देवी के मठ में जाता है और पूजन करके देवी का पूजन करके आता है। चंद्रहास ने कहा कि जी मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पास सालग्राम जी उनकी पूजा करूंगा, पर अकेला जाते हैं, दोनों जाते हैं, दोनों नहीं जाते हैं, हमारे यहां प्रथा अकेले की जाने की है। वहां उसने तीन चार मारने वाले हथियारों को वहां पर भेज रखा था कि देखो जो वहां आए उसको मार देना, बस जो वहां आए उसको मार देना। तो चंद्रहास जी वहां जाने के लिए तैयार हुए कि भाई देवी के मंदिर की तरफ जाएंगे, इतने में उसके साड़े ने आकर कहा कि राजा के यहां जल्दी से जल्दी आपको बुलाया है और ये मुहूर्त टल जाएगा, आपका वहां विवाह होगा और आपकी जगह मैं चला जाता हूं, देवी की पूजा मैं कर आता हूं। तो चंद्रहास तो गया इधर और उस दृष्ट बुद्धि का लड़का गया उधर, वहां उसको मार दिया, वहां उसको मार दिया। तो अब इधर इसका विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद उस इधर जो है दृष्ट बुद्धि था उसके घर में कोहराम मच गया। अब जो जैसा करेगा उसका, जो दूसरे के लिए बुरा करेगा उसका बुरा तो पहले होगा, ये बात दृष्ट बुद्धि कहां जानने वाला। अब उसको समझ में आया कि मैंने बहुत बुरा किया, क्या करूं। अब इसी देश का राजा ये चंद्रहास और हो गया। अब वो बहुत फलानी में जो क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे करते करते जो है चंद्रहास फिर जो है वहां गए देवी के मंदिर में। इससे पहले दृष्ट बुद्धि भी देवी के मंदिर में गया ही था, अपने बच्चे को लेकर खूब रोने लगा और उसके वहीं पर प्राण निकल गए। तब वो चंद्रहास अपने सालग्राम जी को निकाल करके पूजन करके कहा, हे सालग्राम जी, ये देवी आपकी शक्ति तो है, आप इनसे अलग थोड़े ही हो, ये तो आपके अधीन काम करने वाली है, आप इनको कृपा करके ऐसा करो मेरे साला जी जीवित हो जाए, मेरे ससुर जी जीवित हो जाए और इनकी बुद्धि सबकी ठीक हो जाए, हे माता जी आप कृपा करो। सालग्राम जी से प्रार्थना की और माता जी से प्रार्थना की तो वे जीवित हो गए। अब भगवान चाहे तो क्या नहीं हो, सालग्राम जी की पूजा। अब वो जीवित होने के बाद में अब वो चंद्रहास से कितने प्रेम से मिले हैं। दृष्ट बुद्धि ने कहा कि मेरी बुद्धि बड़ी दृष्ट हो गई, खराब हो गई, जीवन में मैंने बहुत पाप, खूब बोलने लगे। चंद्रहास ने कहा अब छोड़ो, अब आप पिछला जीवन ही चला गया तो अब आप ऐसा क्यों विचार करते हो। तब दृष्ट बुद्धि जब खूब रोया ना, अपने पाप अपने मुख से बोल देता है और रोता है तो, और वो भी भगवान के सामने, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, भगवान उसके पाप सब बहा देते हैं, वो शुद्ध हो गई बुद्धि, बड़े पवित्रता से वहां काम करने लगे और इसी के नीचे मंत्री भी बने रहे। चंद्रहास जी ज्यादा राज्य के प्रपंच में पड़ते ही नहीं, बस थोड़ी देर हुआ मामूली सा कोई काम देखकर अपने सालग्राम की भक्ति में लगते, उनको भक्ति का रस मिला हुआ था। उन दिनों में युधिष्ठिर महाराज का राज्य था। युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ करने के लिए अपने घोड़े भेजे, सबसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ घोड़े भेजे। तो चंद्रहास को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज ने घोड़े भेजे हैं, कहा कि इन घोड़ों के साथ कौन कौन है, कि उन घोड़ों के साथ अर्जुन है, उन घोड़ों के साथ भीमसेन है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है क्या साथ, उस घोड़े के साथ जाओ घोड़ा पकड़ लो, जाके घोड़ा पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा कौन राजा ने दुस्साहस किया हमारा घोड़ा पकड़ने का, क्या नाम है उसका, कितनी बड़ी सेना है उसकी, हम एक बार उसको अवसर देते हैं, वो समझ जाएगी गांडीव धनवा अर्जुन तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार है, घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस कैसे किया, बुलाओ उस राजा को, लाओ उसकी सेना। भगवान कहने लगे अर्जुन बहुत जोश में दमखम में बोलते हो, पहले उसको आने दो, उससे बात करो, उसने घोड़ा क्यों पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है। तो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, जो घोड़ा पकड़ता है वो हमारा शत्रु होगा, वो पकड़ेगा हमारे साथ मिलेगा, देखो ऐसी बात नहीं है, कोई आदमी शत्रु की क्रिया करता हुआ भी परम मित्र होता है और कोई आदमी मित्रता करता हुआ भी शत्रुता करता है। ये दुरंगी दुनिया है, तुम जानते हो। अभी उस राजा को आने दो, उसके बाद निर्णय करना। रखो अपना धनुष अपने तरकस में, बाण अपने तरकस में रख दो। इतने में वाया चंद्रहास खूब थाल वगैरह सजावट सामग्रियां लेकर आया, पूजन सामग्री लेकर आया। वहां का अर्जुन कौन है? मैं अर्जुन का दर्शन करना चाहता हूं। वो बड़भागी अर्जुन कौन है? अर्जुन के तो शस्त्र वस्त्र सब बहुत ढीले पड़ गए। अभी अर्जुन रथ पर बैठे हैं। मैं आपका पूजन करना चाहता हूं, इसलिए यदि आप एक बार रथ से नीचे उतर जाए, मेरा पूजन स्वीकार करें, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान ने उसको उतारा और बड़े श्रद्धा से अर्जुन का पूजन किया। अर्जुन का पूजन इसलिए किया कि आप कितने महान हो, कितने ऊंचे भक्त हो। आपका रथ 18 अक्षयिनी सेना के बीच में भगवान ने खींचा है। आप जाने कितने पुण्यशाली हो। आपके दर्शनों की मेरे मन में बड़ी लालसा थी। यदि मैं घोड़े को नहीं पकड़ता तो यह घोड़ा सीधा चला जाता, हम कैसे आपके दर्शन करते। मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे करके माला पहनाई और चंदन लगाया और अब फिर भगवान का पूजन किया। अर्जुन ने कहा, अरे आप इतने ऊंचे भक्त होकर गलती कैसे किए? पहले मेरी पूजा की, पहले तो कृष्ण की करनी चाहिए, साक्षात भगवान है। तब कहा कि देखिए, भगवान की पूजा, भक्त की पूजा में भगवान की पूजा पहले हो ही जाती है। मैंने एक तरह से भगवान का ही आदर किया है। भगवान जिसका आदर करते हैं उसका मैं आदर करता हूं, तो भगवान का आदर हो गया है। पहले आपकी पूजा, अब मैं भगवान की पूजा करता हूं। भगवान की पूजा की और अपना जो खूब हीरो का और का थाल था वो अर्पित किया और कहा कि बस अब कृष्ण भगवान, मैंने आपके दर्शन कर लिए, राज्य वगैरह अपने पुत्रों को दे दिया, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। ये यज्ञ वगैरह युधिष्ठिर का होगा, वो भी देख लेंगे, उसके बाद जो आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करेंगे। भगवान ने वहां चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, चंद्रहास को अपने गले लगाया और चंद्रहास भगवान का भक्त बन गया। ऐसी चंद्रहास जी की कथा है। कहते हैं इस कथा को सुनने से भगवान को अपार प्रसन्नता होती है। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा।